ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखित चैतन्य चरितमृत, तो अध्याय 6 प्यार संख्या 152। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप सब लोग इसको उच्चारण कीजिएगा। सर्वेश्वर्य पूर्णानंद विग्रह सर्वेश्वर्य पूर्णानंद विग्रह हे न भगवान तुम्हें कह निराकार हे न भगवान तुम्हें कर निराकार सर्वेश्वर पूर्णानंद विग्रह यहाँ सर्वेश्वर पूर्णानंद विग्रह यहाँ सर्वेश्वर पूर्णानंद विग्रह यहाँ इसका शब्दार्थ सर्वेश्वर्य पूर्ण छह ऐश्वर्य से पूर्ण आनंद आनंदमय विग्रह विग्रह यहार जिनका हे न भगवान उन भगवान को तुमी आप कह कहते हैं निराकार निराकार। अनुवाद आप लोग मेरे चित्त दोहराइए। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप छह दिव्य ऐश्वर्य से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? क्यों आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? तो तात्पर्य, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार है तो फिर ऐसा किस प्रकार कहा जाता है कि वे अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं तथा अर्पित की हुई की गई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं? मायावादी दार्शनिक वैदिक मंत्रों के मुख्य अर्थ को त्याग कर उनका उनका अर्थ लगाते हैं और परम सत्य को निराकार बतलाने की चेष्टा करते हैं। वस्तु भगवान सनातन साकार ऐश्वर्य से युक्त है, सनातन साकार ऐश्वर्य से युक्त है। मायावादी दार्शनिक परम सत्य की व्याख्या शक्ति रहित कहकर करते हैं, किंतु श्वेताश्वेत उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि परास शक्ति विविधे वसुयते, परम सत्य की विविध शक्तियां हैं। तो तात्पर्य बहुत छोटा सा था। तो इस समय जो हम लोग प्रसंग सुन रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप होता है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक मायावादी शिक्षक थे, मायावाद का शिक्षा वहाँ उसका जो है बहुत कट्टर अनुयायी थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं सार्वभौम भट्टाचार्य को ही अगर परिवर्तन कर दूंगा मायावाद सिद्धांत से, अद्वैतवाद सिद्धांत से मैं उसको अगर वैष्णव बना दूंगा तो अनेक लोग जो है अपने आप भक्ति को स्वीकार कर कर लेंगे। तो इस अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य के मुक्ति के विषय में वर्णन किया जा रहा है। तो इस अध्याय में हम जो कई बहुत सारे काफी सारे सिद्धांत हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो इस सिद्धांत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से ऑटोमेटिकली वर्णन करते हैं। इसे हमें कोई विशेष रूप से समझने की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कविराज गोस्वामी जी लिखित जो है अपने आप हर बात को जो है डिटेल करते ही जाते हैं, तो उसी को हम समझेंगे। और आगे भी अध्याय काफ़ी और भी लंबा है, और भी चीज़ें जो है सिद्धांत जो है सिद्धांत के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु के शिक्षाओं को बताते हैं, हम सबको बताने के लिए चैतन्य चरितमृत का लेखन किया गया। तो पिछला प्रसंग इस प्रकार था कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य का और गोपीनाथ आचार्य जी का वार्तालाप हो रहा था, गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे थे कि ना ये जो है स्वयं भगवान है लेकिन आप उनको भगवान जो है मानते नहीं हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कलयुग में जो भगवान का तो अवतार नहीं, कैसे किस प्रकार भगवान कहते हो। तो गोपीनाथ आचार्य जी, देखो आप शास्त्रों को विश्वास करना चाहिए, शास्त्रों की दृष्टि से हमें देखना चाहिए। तो भागवत भी कई श्लोकों के द्वारा स्पष्ट रूप से उसमें दिखता है कि जो है चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है। स्पष्ट रूप से कहीं जगहों में भागवत में ये नहीं कि एक जगह पे, कहीं जगहों में इसका जो है उदाहरण देते हुए गोपीनाथ आचार्य जी बताते हैं। गोपीनाथ आचार्य जी जो नवद्वीप के वासी थे, श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं को स्वयं देखते थे। और जब प्रथम बार ईश्वरपुरी जी जब नवद्वीप में गए, महाप्रभु से वार्तालाप हुआ, जब नवद्वीप ईश्वरपुरी जी पहुंचे तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य घर पे पहुंचे। तो सबसे पहले कभी ईश्वरपुरी जी गए नहीं थे, तो अद्वैत आचार्य और कुछ भक्तगण जो है वे लोग बहुत दुखी रहते थे, बहुत दुख में थे कि संसार अभी तक कृष्ण भक्ति से विहीन है, कोई संसार में लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते। अगर जो भक्तगण ये सब तो भगवान के नित्य पार्षद प्रकट हुए थे महाप्रभु की लीलाओं में सहयोग करने के लिए, लेकिन लोग उनका निंदा करते थे, बोलते थे तुम लोग जो हरे कृष्णा करते हो इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है, चुपचाप जो है जप करो, क्योंकि हरे कृष्णा जो है वेदों का गुह्य मंत्र है, अगर वेदों का गुह्य मंत्र को इस प्रकार से अगर तुम लोग करोगे तो अमंगल होगा, तुम्हारा जो अमंगल होगा इस स्थान का भी अमंगल होगा, इसका इस स्थान में क्या दुर्भिक्ष इत्यादि जो है पड़ेगा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो टोकते थे तुम लोग भगवान का नाम लेकर तुम लोग क्या मिलता है, क्या मिला बताओ, देखो ये देवी का पूजा करो, चंडी का पूजा करो, इनका पूजा करोगे तो और जो है धन संपत्ति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भक्तगण जब कृष्ण भक्ति विहीन होके और कृष्ण जगत में कृष्ण का नाम संकीर्तन नहीं हो रहा इस दृष्टि को देखते थे, भक्त लोग बहुत बहुत दुखी होते थे। दुखी होकर तो तब भी जब अद्वैत आचार्य जो है अद्वैत आचार्य श्रेष्ठ वैष्णव थे तो उनके पास आके सब लोग रोते थे क्या करें। तो सब भक्त लोग मिलकर इस जगत को आशीर्वाद प्रदान किए थे कि कृष्ण तुम इस जगत में अवतरण लो और इनका आप रक्षा करो, इस जीवों को जो है भक्ति का मार्ग दिखलाओ। तब अद्वैत आचार्य भक्तों के सांत्वना देने के लिए बहुत कई बार सांत्वना दिए, देखो तुम लोग चिंता मत करो, उन्होंने शास्त्र विचार किए, शास्त्र में क्या तरीका है इस जगत को उद्धार करने का, भगवान को बुलाने का क्या तरीका है। तो उनको एकाकी याद आया कि भगवान जो गंगा जल और तुलसी से भगवान जो है ऋणी हो जाते हैं, तो गंगा जल तुलसी से अद्वैत आचार्य महाप्रभु शालिग्राम की पूजा किए और जो है उन्होंने भक्तों को आश्वासन दिए, देखो अगर भगवान कृष्ण अगर इस धराधाम में प्रकट नहीं होंगे तो मैं सच कहता हूँ मैं अपने चार भुजाओं को प्रकट करूंगा और सबको जो है सबका विनाश कर दूंगा, अगर मैं से नहीं किया तो मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, मेरा नाम अद्वैत आचार्य नहीं है। तो इस प्रकार जब भक्त लोग जब लोग जो जो नास्तिक लोग भक्तों को टोकते थे तो भक्त लोग बहुत दुखी होते थे और एकत्रित होकर वे लोग कीर्तन करते थे, तो कीर्तन के जब आवेश में आ जाते थे फिर सब दुखों को भूल जाते थे, तो भक्तों का प्रतिदिन कार्य था। तो सभी भक्त लोग जो है अद्वैत आचार्य घर में एकत्रित होते थे, तो वहाँ पर ही ईश्वरपुरी जी भी जो है वहाँ पर पहुँचे। तो ईश्वरपुरी जब पहुँचे तो उस समय अद्वैत आचार्य भगवान की पूजा कर रहे थे, तो कोई अगर ईश्वरपुरी महावैष्णव जब आ गए तो स्वाभाविक रूप से दूसरे महान वैष्णव को पता लग जाता है कि जो है कोई महावैष्णव आए हैं। तो ये जो है एक भक्त का गुण होता है, भक्त जो है दूसरे भक्त को देखे पहचान लेते हैं कि ये भक्त है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि सन्यासी गोसाई क्या आप वैष्णव हैं और यहाँ आपको कैसे आना हुआ? तो ईश्वरपुरी जी बताए नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ईश्वरपुरी है, मैं वैष्णव, कुछ भी बताए नहीं। कह रहे मैं एक बहुत ही क्षुद्र अधम व्यक्ति हूँ और मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आया हुआ। हालांकि देखा जाए अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी दोनों गुरु भाई होंगे, लेकिन जो है इस प्रकार से आदर दे रहे, मैं आपके चरणों का दर्शन करने के लिए आया हुआ। तो कुछ उनके लक्षण से भक्तगण समझ गए ये कोई वैष्णव भी हो सकता, लेकिन उनको परीक्षा लेना था। तो उसे मुकुंद जो है वहां पे बैठा हुआ था, उन्होंने कृष्ण लीला का बड़ा सुंदर गान किए। तो जब गान किए तो ईश्वरपुरी तुरंत भावावेश में आ गए और जो है वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, धूल में लोटपोट होने लगे। तो पता लग गया ये जो है एक महान वैष्णव है। तो इस पर जब हुआ तो अद्वैता जो तुरंत जाके इनको जो है ईश्वरपुरी को गले लगा लिए और जो उनके नेत्रों के अश्रुओं से ईश्वरपुरी को जो है भिगो दिए। ये भक्तों का देखिए जब भक्त लोग एकत्रित होते कितना खुशी होता है, कितना आनंद होता है। हम भक्तों को भी इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि जब भक्त लोग हम जब भक्त लोग मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को खूब आदर देने का प्रयास करना चाहिए। इसी के बाद धीरे धीरे हमारा जो है हम भी उस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि भक्तों को हम जब भक्तों का हम वैल्यू सीख पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं तो कैसे हमारा भक्ति जो है स्थिर हो सकता है। सारा जीवन अगर हम इस प्रकार से रहेंगे तो फिर जो है हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चाहिए कि हम भक्तों का आदर देना चाहिए। तब सबको पता लगा, उसके बाद पता लगा कि ये जो है ईश्वरपुरी जी है। तो कुछ समय नवद्वीप में रहकर ईश्वरपुरी छुप के वहाँ पे रुके हुए थे, किसको बता नहीं रहे थे कि मैं जो है माधवेंद्रपुरी के शिष्य हूँ। तो एक दिन की बात है कि निमाए पाठशाला से पढ़ के आ रहे थे तो ईश्वरपुरी जी जो है ईश्वरपुरी का आमना सामना हुआ। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो प्रभु ने अपना सेवक को पहचान लिए, ईश्वरपुरी जी को पहचान लिए, ईश्वरपुरी जी है उनके गुरु, अभी नहीं बाद में बनेंगे, लेकिन गुरु है तो क्या हो गया, सब तो कृष्ण के दास ही है। भगवान का कौन जो है, तो भगवान तो सिर्फ लीला ही करते हैं, भगवान का किसी का अभाव है, लेकिन हमें आदर्श देने के लिए, सिखाने के लिए। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो है अपने भृत्य को पहचान लिए, निमाई ने पहचान लिए और उनको कहा महाशय आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो तब ईश्वरपुरी ने पहले पूछा कि ईश्वरपुरी ने जब महाप्रभु को देखा बड़े आश्चर्य हो गए, अरे इतना सुंदर बालक है कभी देखा नहीं हूँ, और उनको लग रहा है कि मैं उसको देखा हूँ, लेकिन जो कृष्ण है, जो नंदनंदन है, सचिसुत यशोदा नंदन सचिसुत गौरचंद्र, जो यशोदा नंदन है वही सच्ची माता का पुत्र निमाए हैं, तो कुछ जाना पहचाना से भी लग रहा है और फिर परिचय भी नहीं था पूरा पूरा। तो ईश्वरपुरी ने पूछा, आप आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए, कहाँ से आ रहे हो, आपका आप क्या पढ़ रहे हो, तीन चीज पूछे। तो ईश्वर महाप्रभु ने कहा कि हाँ ये तीन चीज पूछे। तो उनके महा निमाई के साथियों ने कहा इसका नाम निमाई है। तो ईश्वरपुर जी ने कहा अच्छा आप ही हो निमाई पंडित, मैंने आपके विषय में खूब सुना हूँ निमाई पंडित के नाम से तो विश्व विख्यात हो चुके थे, तो मैं आपके विषय में खूब सुना हूँ। तो निमाई ने कहा, निमाई ने हंसते हुए बोला ठीक है आप महाशय जी आप हमारा घर पे आइए भोजन के लिए आइए। तो इस ईश्वरपुर जी घर पे गए, सच्ची माता घर में गए, तो लक्ष्मी प्रिया ने उनको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई, फिर जो है उनकी सेवा की प्रसाद किए। तो प्रसाद पाने के बाद फिर हरि कथा हुई और जो है फिर ईश्वरपुर जी ने एक किताब दिया कि आप इसको जो है चेक करो ठीक है या गलत है, मैं लिखा हूँ कृष्ण, क्या किताब का नाम था ऐसे कुछ नाम था, कृष्ण लीला नाम था। तो उस समय जो है लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य था ईश्वरपुरी जी गदाधर पंडित को स्वयं कृष्ण लीलामृत पढ़ाते थे, ईश्वरपुरी जी गदाधर पंडित को पढ़ाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बोले कि आप इसको जो है थोड़ा सा ठीक कीजिए, तो मना किए नहीं, भक्त का जो वाणी कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, ये अपराध हो जाएगा। महाप्रभु ने ऐसे कोई बात नहीं है, आप जो है इसको इसको चेक कर लीजिए। ईश्वरपुरी कहने पर फिर वो जो महाप्रभु ने एक आधा गलती बता दी, फिर जस फिर उसके बाद लज्जा गए महाप्रभु स्वयं लज्जा गए। तो इसे इसके बाद जो है इन्होंने जो ईश्वरपुरी जो नवद्वीप में गोपीनाथ आचार्य के घर पे रहते थे, उनके घर पे रहते थे। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं कितने जो है इनका जो खेलकूद था, विद्या विलास लीला था, उसके बाद संकीर्तन लीला, संकीर्तन लीला में तो महाप्रभु ने अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट कर ही चुके थे। यहाँ तक कि गोपीनाथ आचार्य श्रीवास ठाकुर के आंगन में जो कीर्तन होता था उसमें भी गोपीनाथ आचार्य रहते थे, और वही गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजाजी जीजाजी हुए और वो जगन्नाथपुरी आ गए। महाप्रभु के संन्यास से पहले जगन्नाथपुरी आ चुके हैं। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य बताए देखो आप जो है इतना आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये जो स्वयं भगवान है, लेकिन गोपीनाथ आचार्य जो वो सार्वभौम भट्ट मान नहीं रहे थे। तब वापस में थोड़ा बहसबाजी हुआ गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। तो इस प्रकार से बाद में कहा ठीक है ये सब आप सब बात छोड़िए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहा ये सब आप बात छोड़िए, आप जाइए गोसाई जी को चैतन्य महाप्रभु बुलाइए भोजन करने के लिए। तो फिर महाप्रभु को जाके उन्होंने कहा महाप्रभु को जो मुकुंद आदि भक्तों ने जाके कहा, मुकुंद क्योंकि वो भी साथ में आए थे महाप्रभु के साथ संन्यास लेने के बाद पूरी तक आए थे, नित्यानंद प्रभु मुकुंद और जगदानंद पंडित ये तीन लोग आए थे। तो मुकुंद ने कहा बड़ा महाप्रभु कहा कि महाप्रभु आज गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य का बहुत बहसबाजी हुआ और उन्होंने गोपीनाथ आचार्य अच्छा जरूर मजा चका दिए, तो महाप्रभु बड़ा संतुष्ट नहीं हुए ऐसे आपने क्यों किया, तो वो हमसे प्रेम करते हैं आप लोग ऐसे क्यों आप उनको बोलते हो। तो फिर जो है भोजन के लिए जगन्नाथ जी प्रसाद ला के सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद खिलाया महाप्रभु को, और उनकी इच्छा थी कि मैं उनको वेदांत पढ़ाऊँ, तो उस तरह से प्रसंग को हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में ही जो आज का प्रसंग है, आज जो कह रहे सर्वेश्वर परिपूर्ण जो है भगवान जो है उसको आप निराकार करोगे बात अपने आप क्लियर हो जाएगी, तो इसमें हमें थोड़ा सा मनन करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। तो महाप्रभु ने उनको सर्वभौम भट्टाचार्य उनको जो है वेदांत 7 दिनों तक सुनाते रहे और आठवें दिन पूछते हैं शरण भट्टाचार्य जी, अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम, सात दिन कर तुमी वेदांत श्रवण। आप शरण भट्टाचार्य ने सात दिनों तक उनको वेदांत सुनाने के बाद आठवें दिन उन्होंने उनसे फिर पूछा, आप ये जो सुन रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भलो मंद नाही कहे रहो मन धरी, बुझी के ना पूछे यहा बुझीते न पारी। तो आपको कुछ अच्छा या बुरा कुछ समझ आ रहा है, मेरे सिखा रहा हूँ समझ आ रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, साथ में आपने कुछ भी नहीं बोला, सब सुनते जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो या कि नहीं समझ पा रहे हो? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं मतलब कह रहे कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो प्रभु महाप्रभु कहते, प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन, तुम्हारो आज्ञाते मात्र करिया श्रवण। देखो मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, महाप्रभु ने, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, आपने कहा सुनने के लिए तो मैं सुन रहा हूँ। सन्यासी र धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम यही अर्थ करो बुझीते न पारी। आपने कहा कि सन्यास का धर्म है कि वेदांत श्रवण करना, तो मैं सुन रहा हूँ। और लेकिन आप जो अर्थ कर रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझे जो है समझ नहीं आ रहा। भट्टाचार्य ने कहा कि भट्टाचार्य कहे ना पूछे न है न क्या न आ रहा, पूछी बारे लागे सही पूछे पुनर्बार। भट्टाचार्य ने कहा अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर किसी व्यक्ति को समझ नहीं आता तो पूछ सकता कि वो दोबारा पूछ सकता है, लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा और आप जो है पूछ भी नहीं रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? तुम्हारा हृदय में कुछ बात है क्या, तुमको जानते हो क्या? सारों बड़े से पूछते, तुम्ही सुनी सुनी रहो मनो मात्र धरी, हृदय के अच्छे तुम्हार बुझीते न पारी। आप सब सुन रहे हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, आपका हृदय में क्या है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका हृदय में क्या छुपा है आप भी कुछ जानते हो क्या? प्रभु कहे सूत्र अर्थ पूछ या निर्मल, तुम्हार व्याख्या सुनी मन हय तिकल। प्रभु ने कहा कि आपका जो मूल श्लोक तो समझ आ रहा है, आप वेदांत सूत्र को ले रहे हो, लेकिन उसमें जो आपका जो इसमें जो आपका जो व्याख्या है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो व्याख्या किसका दे रहे थे? शंकराचार्य की व्याख्या दे रहे थे, तो उनको जो है महाप्रभु को वो हृदय को भा नहीं रहा था, तो वो मुझे जो है समझ नहीं आ रहा। सूत्र अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम ही भाष्य कहो सूत्र अर्थ अच्छा दिया। तो वेदांत सूत्र तो अपने आप में स्वयं ही प्रकाशित है, वो स्वयं स्पष्ट रूप से बता रहा है हर चीज को, लेकिन ये जो भाष्य जो है आपका, ये आपके भाष्य मूल जो भाष्य है उसको छुपा देता है। आपको समझ आ रहा है? सबको पूछना पड़ेगा मुझे, समझ आ रहा नहीं आ रहा ना। सूत्र मुख्य अर्थ ना कर व्याख्यान, कल्पन तरे तुम ताहा करो आच्छादन। तो कह रहे तो सूत्र तो स्पष्ट अपना व्याख्या करता ही है, लेकिन आपका जो काल्पनिक अर्थ है ये जो है ये ठीक नहीं है, इसको आच्छादित कर देता है। वो काल्पनिक जो शिक्षा थी जो आच्छादन कर रहा था वह शंकराचार्य के भाष्य। उपनिषद शब्द ही मुख्य अर्थ है, सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सब कह। तो सही अर्थ मुख्य व्यास सूत्र सब कह, तो उपनिषद का वही वही बात बता रहे कि उपनिषद अपने आप में स्पष्ट है और उसका जो है ये व्यासदेव जी का जो है व्यासदेव जी का ही शिक्षा है। तो व्यासदेव जी स्वयं भगवान नारायण के ही अवतार थे, उन्होंने जो सूत्र लिखे वो अपने आप में स्पष्ट है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताना कह रहे कि इसमें जो है इसको ढकना ये सब ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करें, मुख्यार्थ इसका मुख्य अर्थ को छोड़कर आप जो है उसको मुख्यार्थ छाड़िया करो, गौणार्थ कल्पन अविद्यावृत्ति छाड़ी करो शब्दर लक्षण। आप इसका मुख्य अर्थ को छोड़ देते हो, वेदांत सूत्र का मुख्य अर्थ को आप छोड़ देते हो और उसका अभिधा वृत्ति अर्थात उसकी लक्षण वृत्ति को उसका लक्षण वृत्ति को जो है आप बताते हैं, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ आपका जो है कल्पना बना ही रहता है। प्रमाणे मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान श्रुति ये मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण। तो प्रमाणों में यही प्रमाण में जो है श्रुति ही अपने आप में परम प्रमाण है। यह श्रुति के जो मुख्य अर्थ को श्रुति जो अपने आप कह रहा है वही वास्तव में परम प्रमाण है। श्रुति क्या कह रहा है, श्रुति कह रहा है कि जीवेर अस्थि विष्टा दुई शंख गोमय श्रुति वाक्य सही दुई महापवित्र है। तो श्रुति में कहा गया है कि जो किसी जीव का हड्डी है और जो किसी जीव का जो मल होता है वो अपवित्र होता है, लेकिन वही श्रुति कह रहा है कि जो शंख है और गोबर है ये परम पवित्र है। तो श्रुति दोनों ही बात कह रहा है, दोनों ही बात कह रहा है। तो जो शंख होता है वो भी एक जीव का हड्डी होता है और जो गोबर है गाय का गोबर है वो पवित्र होता है। तो स्पष्ट रूप से इसको लेना चाहिए और इसको अगर हम लोग कोई कल्पना रखें कि नहीं अगर जो है गाय का एक पशु का गोबर पवित्र है तो वैदिक ब्राह्मण का भी जो गोबर है वो पवित्र होना चाहिए, इस प्रकार का अर्थ करना ठीक नहीं है। और जो शंख है वो एक जीव है, समुद्र में रहता है, उसका हड्डी भगवान उसका जो है लेके आते हैं वो यहाँ भगवान के सामने पूजा में बसता है तभी वो पवित्र है, शंख को छूकर हम पवित्र हो जाते हैं। श्रुति कह रहा है कि पवित्र है। हाँ, अगर कोई सोचे अगर ये एक सामान्य जीव का हड्डी अगर पवित्र है तो कोई बहुत बड़े जो ब्राह्मण है उसे खोपड़ी को ला के बजाया जाए तो वो क्या 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 होगा, अशुभ होगा और नहाना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्पष्ट श्रुति बताता है कि आप जो है इसका स्पष्ट शब्द को मान लेना चाहिए। और श्रुति क्या बताता है कि बताता है कि जो है एक जो यही है यहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि जो शंकर भाष्य है ये ब्रह्म को श्रेष्ठता स्थापित करता है कि जो है ब्रह्म जो है ब्रह्म का बताता है कि ब्रह्म जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है निराकार ज्योति है ना शून्यवाद, ये जो निराकार ये जो है ब्रह्म का अर्थ करते हैं। तो सर्वम भट्टाचार्य बता महाप्रभु बता रहे कि देखो कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है कि जो सर्वम भट्टाचार्य शिक्षा था कि ब्रह्म का मतलब है कि निराकार ज्योति या शून्यवाद ये जो ब्रह्म का अर्थ है और सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है, निराकार ब्रह्म से। इस तरह से आप लोग तो रोज सुनते ही है, पता ही होगा आप सबको। तो महाप्रभु ने कहा ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म शब्द का मतलब है कि बृहद वस्तु, बहुत बड़ा वस्तु जो है वो ब्रह्म कहा जाएगा। क्योंकि वास्तव में जो ब्रह्म शब्द कहा गया वेदों में, शास्त्रों में और वेदांत सूत्रों में, ये भगवान भगवान का अंग कांति को कहा गया है। और ये भगवान का वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम के चारों तरफ जो है ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति जो है वो वे जो है एक बृहद वस्तु है, क्योंकि वैकुंठ का चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए उसको बहुत बड़ा वस्तु कहा गया। तो ब्रह्म शब्द का मतलब है कि भगवान, ब्रह्म शब्द का मतलब ही होता है कि भगवान। पिछले हफ्ते हमारे सार्वभट्टाचार्य जी ने, सार्वभौम प्रभु ने बताए थे कि ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान, ब्रह्म शब्द जो बताता है स्वयं भगवान के लिए बताता है, स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रीय प्रमाण। तो ब्रह्म शब्द का मतलब जो है वो भगवान है, और भगवान जो स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रीय प्रमाण। तो स्वयं कृष्ण जो स्वयं भगवान है, ये शास्त्र की व्याख्या करता है कि ये जो है ये जो भगवान है, शास्त्र बताए कृष्ण जो है भगवान है। तो ब्रह्म जो है, इस प्रकार महाप्रभु ने काफी चीज बताया कि जो है कि देखो, ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। और उसी शास्त्रों में श्रुति में बताया गया है कि ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, तो ब्रह्म के पास तो नेत्र था, तभी तो उसने दृष्टिपात किया। तो इस प्रकार कई चीजों में जो है, कई तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया कि कृष्ण भगवान है। तो आगे 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 क्या होता है कि पिछले हफ्ते सार्वभौम प्रभु जी ने एक श्लोक लिए थे 147 जो है, बता रहे कि ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये जो जो तीन है इसको, ये जो है तभी पूर्ण भगवान माना जाता है। अगर भगवान को ब्रह्म, भगवान से ब्रह्म को अलग कर दे तो वो भी ठीक नहीं है। जो ब्रह्म है वो भगवान में आश्रित है, और इस प्रकार जो है कई तरीके से व्याख्या करते हुए बताते हैं। तो फिर आगे बता रहे कि 47 श्लोक से बता रहे, वेद और गुण अर्थ निगुण अर्थ पूछे ने न हो, पुराण वाक्य सही अर्थ कर निश्चय। तो बता रहे कि वेदों का जो गुण अर्थ है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो हमें चाहिए कि पुराणों को, अर्थों को ले। अब पुराण में स्पष्ट रूप से पता लग ही जाएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, भगवान जो सब कार्यकलाप करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं। तो बता रहे, और एक बता रहे कि भागवतम का श्लोक उदाहरण दे रहे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे, आहो भाग्य महाभाग्य नंद गोप ब्रज कसान, जन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कह रहे आहो भाग्य नंद गोप ब्रज कसान। आओ, कितना बड़ा भाग्य, सुखदेव गोसाई बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हुए, सुखदेव गोसाई बता रहे आहो भाग्य, कितना बड़ा मेरा, कितना देखो क्या भाग्य है नंद और यशोदा का, जहां की यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जहां पे जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जो है, परमानंद पूर्ण ब्रह्म और सनातन जो है वो वहां पे ब्रज सखाओं का मित्र बने हुए हैं। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम का एक उदाहरण दे रहे हैं, और बता रहे कि उसी वेदों में कहा गया है अपाणि पाद सुति व्रजे प्राकृते पाणि चरण, अपाणि पाद सुति व्रजे प्राकृत चरण, पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्व ग्रहण। देखो वेदों में कहा गया है कि भगवान जो है अपाणि पाद, उनके जो है वो जो है उनका पाँव नहीं है, अपाणि पाद उनके पास जो चरण नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान के पास प्राकृतिक चरण नहीं है, प्राकृतिक चरण नहीं है, भौतिक प्राकृतिक चरण नहीं है। इसके पुनः कहे शीघ्र कह करे शीघ्र चले करे सर्वग्रहण, फिर कहता है वही शास्त्र श्रुति के वही जो है वेद कहता है कि भगवान के पास जो है भौतिक उनके जो है भौतिक हाथ पांव नहीं है, लेकिन वही श्रुति कहता है कि भगवान चलते भी हैं। तो इसका मतलब है भगवान के पास भौतिक हाथ पांव नहीं है, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक हाथ पांव सब कुछ है, तभी तो वो चल पाते हैं। तो श्रुति में जो इसे किस प्रकार से कहा गया है, अतएव श्रुति कहे ब्रह्म निर्विशेष मुख्य छाड़ी लक्षण ते माने निर्विशेष। तो श्रुति कहता है कि ब्रह्म जो है जब ब्रह्म का विषय में जिज्ञासा करता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसका जो मुख्य अर्थ तो छोड़ देते हो और काल्पनिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो इस पर जो है चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाओं के समय इस बात से बहुत जो है अप्रसन्न रहते थे कि ये जब ब्रह्मवादी शिक्षाओं से महाप्रभु बहुत अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि अधिकतर लोग ब्रह्मवादी का मतलब ये जानते हैं कि भगवान जो है निराकार है, शून्यवाद है, भगवान के पास कोई जो है इंद्रियां नहीं है, ये सब शिक्षा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसी को खंडन करने के लिए ही आए थे। चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त जो है वो थे तो चैतन्य महाप्रभु के उम्र से बड़े भी थे और एक गंगादास पंडित के पाठशाला में ही पढ़ते थे। लेकिन देखिए क्योंकि उस समय पहले शास्त्र ही पढ़ा जाता था, तो शास्त्र पढ़ के उसको भी कुछ जो है ब्रह्मवाद की शिक्षाएं अच्छा लगता था, सीख लिया था। तो वो जब अपने साथियों से मिलते थे तो इसी की चर्चा करते थे कि जो भगवान जो है ब्रह्म है, ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ है, और जो है और ये जो जो ब्रह्मवादी की ही जो ब्रह्म का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, सब कुछ चर्चा करते हैं। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता था। तो महाप्रभु ने कहा तुम ऐसे की व्याख्या करते हो। तो तब भी जो है वो मानते नहीं थे, उसकी व्याख्या करते थे। तो महाप्रभु को एक दिन गुस्सा आया, महाप्रभु ठीक है बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ जो है तुम कितना ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, तो सभी ब्रह्म है ना, तो एक दिन कल से बताऊंगा। तो वहाँ क्या हुआ कि मुरारी गुप्त जी थे तो हनुमान जी के अवतार, उनके ही सेवक थे। तो मुरारी गुप्त जी जो है सो घर पे जो है भोजन कर रहे थे। तो महाप्रभु वहाँ पहुँच गए और उनके थाली में ही जो है उन्होंने सुसु कर दिए महाप्रभु। तो जो गोपीनाथ ये मुरारी गुप्त जो है बड़ा क्रोधित हुआ, देख अचानक पानी का हाथ छाक गया। तो देखा कि निमाई ऐसे स्वभाव से तो बड़ा चंचल था, सबको छेड़ता था, सबको हराता था, और उसने ये भी हरकत कर दिया। इसने तो गुस्सा आया उनको, बोला निमाई क्या देखो जब लोग बड़े होते हैं तो उनका जब बुद्धि विकसित होती है, अब तुम जितने बड़े हो रहे हो तुम्हारी चंचलता इतना ही बढ़ रहा है। तो महाप्रभु ने कहा क्यों कल तो तुम कहते सभी ब्रह्म 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 है, तो अन्न भी ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो, ये सुसु भी ब्रह्म है, तो खाओ क्या है, सब तो एक ही है, दो थोड़ी ना है। तो इस प्रकार जो है अपने भक्तों को शिक्षा देते थे। के देखिए, और चैतन्य भागवत में जैसे हम चैतन्य चरित पढ़ते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में गए और जो प्रकाशन सरस्वती जो मायावादी सन्यासी थे उनका उद्धार किए, तो चैतन्य महाप्रभु भागवतम में बताते प्रकाश जो है बनारस में बेटा प्रकाशन सरस्वती अपने भक्तों को बता रहे, बेटा प्रकाशन सरस्वती बनारस में रहता है और मेरे को हमेशा काटते रहता, खंडन करते रहता, ब्रह्म है साकार, साकार भगवान को वर्णन नहीं करके ब्रह्म ब्रह्मवादी का ही वर्णन करता था प्रकाशन सरस्वती, वो हमेशा ब्रह्म ब्रह्म कर करके मेरे सारे अंगों को वो काट रहा है प्रकाशन सरस्वती, तो इसके पाप के कारण मैंने उसको क्या कर दिया, कोढ़ की बीमारी दे दिया, कोढ़ी बन के बैठा हुआ है बनारस में, लेकिन तब भी जो है ये ब्रह्म ब्रह्मवादी जो है छोड़ता नहीं, तो हो सकता है कि प्रकाशन सरस्वती को जो है चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में ठाकुर जी कह रहे कि जो है इस प्रकार जो है प्रकाशन, क्योंकि उसमें चैतन्य भागवतम में प्रकाशन सरस्वती का जिक्र जो है उनका उद्धार की जिक्र नहीं आता नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते, लेकिन देखिए चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मवादियों से असंतुष्ट रहते थे, इसलिए कहा कि जब प्रकाशन सरस्वती का जो उसको मैंने कोढ़ की बीमार कर दिया तब भी जो ब्रह्म ब्रह्म कहते थे तब भी जो है ब्रह्म ब्रह्म का वो व्याख्या करते रहता, तो महाप्रभु जब हम भगवान का पूजा अर्चना करते हैं भगवान की साकार रूप की उपासना करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु को यही अच्छा लगता है, हो सकता है दोनों बात ही ठीक हो कि हो सकता है सरस्वती जो है ऐसे भी जो महाप्रभु ने कहा वो भी हो सकता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा वो दोनों बात भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य बचा हुआ है जो प्रभुपाद कह रहे हैं आप सुन लीजिए, जिस प्रकार कहा गया है श्वेतसूत्र उपनिषद के अनुसार अपाणिपादो जवन गृहीत्वा पश्येत चक्षुष स्मृत्व कर्ण सवेति विद्यम न तस्यस्ते वेता तमाहु ग्रह तमाहु रग्रह महंतम। इस वैदिक मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरुष महंतम, पुरुषो महंतम, पुरुष शब्द का अर्थ है व्यक्ति, इस पुरुष के कृष्ण होने की पुष्टि भगवद गीता में अर्जुन द्वारा की गई, जब वो कृष्ण को पुरुषम शाश्वतम आदि पुरुष के आदि पुरुष है कहकर संबोधित करता है, अतः श्वेता सिद्ध उपनिषद के इस श्लोक में वर्णित पुरुषो महंतम श्री कृष्ण है, उनके हाथ पांव भौतिक नहीं है अपितु पूर्णतया दिव्य है, किंतु जब वे प्रकट होते हैं तो मूर्ख लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं, अवजानती मां मूढ़ा मानुषम तनु मार्सुका, जैसे वैदिक ज्ञान नहीं है, जिसे वैदिक ज्ञान नहीं है उसने प्रमाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन नहीं किया है वो कृष्ण को नहीं जान पाता, अतएव वो मूढ़ है, ऐसा मूर्ख लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं, परम भाव मजानंत, वे वास्तव रूप में जान ही नहीं पाते कि कृष्ण क्या है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् अद्विसिद्धये, केवल वेदों का गहन अध्ययन करने से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, मनुष्यों को किसी भक्त यद पाद पद्म की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, भक्त की कृपा हुए बिना मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, भगवद गीता में अर्जुन भी इसकी पुष्टि करते हैं, हे प्रभु आपको समझ पाना अत्यंत कठिन है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवत भक्ति की कृपा बिना भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए भगवद गीता में एक अन्य आदेश है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शनम, मनुष्यों को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर उनके शरण लेनी चाहिए, तभी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में समझ सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कृपा शक्ति के द्वारा सारंग भट्टाचार्य को जो है वो चीज सिखा रहे कि हमें स्वयं भगवान का जो है भक्ति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा देकर और उनको जो है वैष्णवता में परिणत कर देते हैं सारंग भट्टाचार्य को। तो यही शिक्षाएं जो है इसे प्राप्त हो रही थी, चैतन्य में बता रहे थे कि जो है एक काल्पनिक शिक्षाएं वेदों की काल्पनिक शिक्षा में फंसना ना फंस कर भगवान की जो है भक्ति करना चाहिए। और स्पष्ट रूप से अगर हम लोग श्रुति वेदों को और जो वेदांत सूत्र को समझे तो यही प्राप्त होगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, परम भगवान का अज्ञान भाव से भक्ति करना चाहिए। इसी से यही जो है शिक्षा में शास्त्रों से पता चलता है। तो काल्पनिक शिक्षा में ना फंस कर स्वयं भगवान का हमें पूजा अर्चना वंदना नवदा भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज चैतन्य चिंता मित्र की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रमाण।